कला एवं स्थापत्य, स्तूप। सातवाहन सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से दक्षिण भारत में बौद्ध कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इस समय नए स्तूपों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन स्तूपों का जीर्णोद्धार किया गया। दुर्भाग्यवश उस समय के स्तूपों में से आज कोई भी अपनी पूर्ण अवस्था में प्राप्त नहीं है। अमरावती स्तूप। स्तूपों में अमरावती, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, का स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश में अमराणम का प्रसिद्ध शैव तीर्थी अमरावती नाम से प्रसिद्ध है। इसी को अमरेश्वर भी कहा जाता है। संप्रति इसकी स्थिति गुंटूर जिले के कृष्णा नदी तट पर है। बस्ती से लगभग 18 मील दक्षिण दिशा में महान बौद्ध स्तूप था। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य शासक अशोक ने अन्य स्थानों के समान यहाँ भी एक स्तूप का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ से अशोक स्तंभ का एक खंड मिलता है। सातवाहन काल में यहाँ महास्तूप का निर्माण करवाया गया। इसे महाचैत्य अर्थात महाचैत्य कहा गया है। पुलमावी के समय में स्तूप का जीर्णोद्धार हुआ तथा इसे कलाकृतियों से सजाया गया। संभवतः चारों ओर पाषाण वेदिका भी इसी समय बनाई गई। दुर्भाग्यवश अब यह स्तूप अपने मूल स्थान से नष्ट हो गया है तथा इसके अवशेष कलकत्ता, मद्रास एवं लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी को स्तूप का पता चला। उन्होंने यहाँ से प्राप्त शिलापट्टों तथा मूर्तियों के सुंदर रेखाचित्र तैयार किए। 1840 ईस्वी में इलियट द्वारा स्तूप के एक भाग की खुदाई करवाई गई, जिसमें कई मूर्तियां प्राप्त हुई। अमरावती स्तूप के शिलापट्टों पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पर इसके वास्तु के विषय में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। स्तूप के चारों ओर की वेदिका या वेस्टिनी काफ़ी लंबी थी, जिसमें उसनीस कोपिंग स्टोन्स, फूलों से उत्कीर्ण सूचियाँ क्रॉस बार्स तथा चार तोरण द्वार एवं स्तंभ लगे थे। प्रत्येक तोरण द्वार के पीछे स्तूप के आधार से निकला हुआ एक चबूतरा था, जिसे आयक अर्थात आर्यक या पूज्य कहा जाता है। इस पर 5 आयक स्तंभ लगाए जाते थे। आयकों का उद्देश्य स्तंभ को आधार प्रदान करना था। आयक स्तूप के आधार से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए थे। प्रत्येक आयक से लगभग अगल बगल सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जिनसे होकर दक्षिणी प्रदक्षिणा पथ तक पहुँचा जाता था। स्तंभों से स्तूप अलंकारिक लगता था तथा ये संपूर्ण संरचना को सुदृढ़ आधार प्रदान करते थे। आयक मंचों का निर्माण अंदर स्तूपों की अपनी विशिष्टता थी। स्तूप की न केवल वेदिका तथा प्रदक्षिणा पथ अपितु गुंबद अंड भी संगमरमर की पट्टियों से जुड़ा गया था। गुंबद के शीर्ष पर एक मंजूषा थी, जिसके ऊपर लोह छत्र लगाया था। अनुमान किया जाता है कि स्तूप का आधार काफी बड़े आकार का रहा होगा। संभवतः उसका व्यास 162 फीट तथा वेदिका का घेरा 800 फीट था। इसमें 9 फीट ऊंचे 136 स्तंभ तथा पौने 3 फीट ऊंची 348 सूचियां लगी थी। सभी के ऊपर कलापूर्ण नक्काशी की गई थी। सबसे ऊपरी भाग पर छत्रयुक्त हर्मिका भी थी। द्वार की वेदिका प्रचार सिंहों की मूर्तियां हैं। 2 सिंह भीतरी भाग में आमने सामने मुंह किए हुए तथा बाहर की ओर स्तंभों के 2 सिंह अपने मुंह किए हुए उकेड़े गए हैं। निश्चित अपनी पूर्णता में यह स्तूप उच्च धार्मिक आदर्शों तथा अत्यंत विकसित कलात्मक भावना पर आधारित स्थापत्य कला की ओजपूर्ण शैली का प्रतिनिधित्व करता होगा। अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक कलात्मक अलंकृत मिलता है। कलाविदों ने उत्कीर्ण शिल्प को 4 भिन्न भिन्न कालों से संवर्धित किया है। प्रथम काल ईस्वी पूर्व 200 ईस्वी से ईस्वी पूर्व 100 ईस्वी तक। इस समय अंदर स्तूप स्तंभ शीर्ष पर विभिन्न प्राणियों एवं बुद्ध के प्रतीकों आदि का अंकन किया गया। अभी तक बुद्ध की मूर्तियां गढ़ने की प्रथा प्रारंभ नहीं हुई थी। द्वितीय काल ईसा पूर्व 120 से 120 तक। इस अवधि की शिल्पकारी पहले की अपेक्षा भव्य एवं सुंदर है। बुद्ध का अंकन प्रतीक तथा मूर्ति दोनों में मिलता है। महादिनी स्क्रमण माण विजय जैसे कुछ दृश्य अत्युत्कृष्ट है। तृतीय काल 150 ईस्वी से 250 ईस्वी तक। यह सातवाहन नरेश पुल माऊवी काल है जिसमें वास्तु तथा शिल्प दोनों दृष्टियों से अस्तूप का अधिकतम संवर्धन किया गया। अस्तूपों सूचियों तथा उस नीसों पर सुंदर शिल्प उत्कीर्ण हुए। स्तंभों के बाहरी बाजुओं पर बीच में बड़ा कमल ऊपर अर्धकमल उत्कीर्ण है तथा मध्य में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाएं दिखाई गई हैं। छज्जे के भीतरी बाजू के स्तंभ सूची आदि पर जातक ग्रंथों से ली गई विविध कथाएं एवं सूची पर उत्कीर्ण नलगिरी हाथी के दमन का दृश्य काफी प्रभावोत्पादक है। धर्मचक्र पूजा आदि के दृश्य भी सुंदर हैं। ये सातवाहन कालीन कला के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं। चतुर्थ काल 200 ईस्वी से 250 ईस्वी। इस समय अमरावती इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के शासन में आ गया। इसी समय नागार्जुन कोंड के स्तूप का भी निर्माण हुआ। अतः अमरावती शिल्प पर उसका प्रभाव पड़ा। पूर्ण स्तूप की प्रकृति आने प्रकृति वाले शिल्प शिलापट चारों ओर लगा दिए गए तथा पहले के कुछ पुराने शिलपाट निकालकर उसके पीछे की ओर स्तूप आदि की आकृतियां खोदकर उन्हें पुनः स्तूप के चारों ओर लगा दिया गया। शिल्पकारी का स्तर पहले जैसा रमणीय नहीं रह गया। मानव आकृतियां अधिक लंबी और छड़हड़े बदन की बनाई गई। उन्हें मोती मालाओं से लादा गया। गोल घेरे में फूल पत्तियों की छोटी बेल बनाई गई हैं। झरोखे में झांकती हुई स्त्री पुरुषों के मुखड़े बनाए गए। अलंकरण में पहले जैसी सुंदरता एवं सजीवता नहीं मिलती। अमरावती शिल्प शिलापट्टों की नक्काशी में तत्कालीन जनजीवन की सर्वांगीण झांकी प्रदर्शित हुई है। निर्धन व्यक्ति की कुटिया से लेकर भिक्षुओं के दुमंजिले विहार तथा राजमहल सभी अत्याधिक निपुणता के साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। बुद्ध चरित्र तथा जातक कथाओं का इतना विशद एवं सटीक उत्कीर्णन भारत के किसी अन्य स्तूप एवं चैत्य गृह में अप्राप्य है। इस प्रकार अमरावती का महास्तूप भारतीय वास्तु की उज्ज्वलतम कृति है। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय इस महान कृति में दर्शनीय है। कुमार स्वामी यहाँ की शिल्प कला को भारतीय कला का अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प मानते हैं। नागार्जुन कोंड स्तूप अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित नागार्जुन पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर भी तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्तूपों का निर्माण किया गया जिसे नागार्जुन कोंड स्तूप कहा गया जाता है। यहाँ इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी थी जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। नागार्जुन कोंड का नाम विजयपुरी भी मिलता है। इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण वर्ण के अनुयायी थे किंतु उनकी रानियों की अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। इन्हीं की प्रेरणा से वहां स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ। उसकी एक रानी बीपी सिरिनिका के एक लेख से महाचित्र का निर्माण पूरा किए जाने की सूचना मिलती है। महास्तूप के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य स्मारकों एवं मंदिरों का निर्माण भी हुआ। रानियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए नावकर्मिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लंगहट नामक विद्वान ने यहाँ के पुरावशेषों को खोज निकाला था। पश्चात 1927 ईस्वी से 1959 ईस्वी के बीच यहाँ कई बार उत्खनन कार्य हुआ। फलस्वरूप यहाँ के अनेक स्तूप चैत्य विहार मंदिर आदि प्रकाश में आए हैं। नागार्जुन कोंड से लंगहट को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए थे जिनमें से 4 पाषाण पटियाओं से जड़े गए थे। नागार्जुन कुंड से जो स्तूप मिले हैं वे अमरावती के स्तूप से मिलते जुलते हैं। यहाँ का महास्तूप गोलाकार था, इसका व्यास 106 फुट तथा ऊंचाई लगभग 80 फीट थी। भूतल पर 13 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था जिसके चारों ओर वेदिका थी। स्तूप के ऊपरी भाग को कालांतर में उत्कीर्ण शिलापट्टों से अलंकृत किया गया। शिलापट्टों पर बौद्ध धर्म से संबंधित कथानकों को प्रचुरता से उत्कीर्ण किया गया है। कुछ दृश्य जातक कथाओं से भी लिए गए हैं। प्रमुख दृश्यों में बुद्ध के जन्म, महाभिनिक्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, माया का स्वप्न, मार्ग विजय आदि हैं। नागार्जुन कुंड स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। नागार्जुन कुंड के आयकों पर अमरावती स्तूप की ही भांति अलंकृत शिलापट लगाए गए थे। इस स्तूप की वेदिका में प्रवेश द्वार तो मिलते हैं किंतु तोरणों का अभाव है। उत्कीर्ण शिलापट्टों का कला सौंदर्य दर्शनीय है। दक्षिण की ऐसी स्वच्छता, सच्चाई एवं बारीकी संपूजन की निपुणता, वस्त्रधारण, वस्त्राभूषणों का संयम एवं मनोहर रूप आदि अन्यत्र मिलना कठिन है। ये आंध्र शिल्प की चरम परिणति को सूचित करते हैं। नागार्जुन कुंड की खुदाई में महास्तूप के अतिरिक्त अन्य कई लघु स्तूप, मंदिर मूर्तियां, राजप्रसाद के ध्वंसावशेष भी प्राप्त हुए हैं। हाड़ी थी पुष्प भद्र स्वामी शिव तथा कार्तिकेय के मंदिर एवं बैठी हुई मुद्रा में बनी हाड़ीती की मूर्ति उल्लेखनीय है। राजप्रसाद के ध्वंसावशेषों में परिखा प्रकार एवं द्वार तोड़न मिलते हैं। प्रसाद के उत्तर दिशा में व्यायामशाला मिलती है। नागार्जुन कुंड के स्मारकों का कला का काल ईसा पूर्व दूसरी से पांचवी सती ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया। अमरावती तथा नागार्जुन कुंड के अतिरिक्त दक्कन में कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में स्थित अन्य कई स्थानों जैसे भटिप्रोलू, पोंगंज, गोल्ली, जयपेट, घटंतशाला आदि में अनेक स्तूपों, चित्रों तथा विहारों का निर्माण सातवाहन इक्ष्वाकु युग में किया गया था।